मुझे कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना।
मुख्तार को पहले ही नारियत से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो।
क्या हुआ नारिया?
तुम तो कान लगाए भी खड़ी थी मक्कार, सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय, तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया, काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे।
गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया?
मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती।
अब भी कर सकती हो?
नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारी चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे, वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है, जाए तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती।
नहीं, बजाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा।
हाँ, क्यों नहीं, मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है।
नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है, उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है।
वाकई?
जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती है।
ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है।
मकसद?
तुम रुस्तम की छवि बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था।
ज्ञान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही छवि हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेजे पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है।
हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है।
शिप्रे बक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी, लश्कर शाम की है के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसी कद्दोकामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर रुजिनात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया। मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें पूरा दिन न देखी, मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछे।
हम कैसे मान ले कि तुम इराकी हो?
कैसे? मेरे लहजे से हम इराकियों का ऐनगैन शामियों के ऐनगैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूजे नहीं काली बलाए। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामला तो नहीं?
शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता?
ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूजों में क्या देखा, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा।
इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी, अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा।
बिच्छू, जंगजू बिच्छू, हजार बिच्छुओं वाले कूजे ऊँटों पे लाद के लाए हैं और मजलिसों के जरिए उन्हें मदारिस के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना, शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था, खुदाया माफ करना।
ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है, मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है।
खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रखो।
इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं?
कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से।
बेशक ये शामी चेलों में से है, इसके हाथ पांव बांध दो।
जी अमीर, उतरो सर।
बिच्छू को ऐसे कैसे शिकार करते हैं कि ना मरे?
बिल्कुल पानी पीने की तरह, मैंने उनकी चाल को अपनी आंखों से देखा है। शामी फौजी एक टिड्डे को लकड़ी पे बांध के लाते हैं और उसे बिच्छू के सुराख के करीब ले जाते हैं। बिच्छू खाने के लालच में बाहर आता है और पकड़ा जाता है।
लड़ाका बिच्छुओं को शिकार करने वाले शिकारी और शाम के कटे हुए और छिले हुए जंगजू सिपाही मेरी तरह के तो नहीं थे?
क्यों नहीं, शक्लो हयात पर तुम उनसे कम नहीं हो, मगर कद्दो कामत में उनके एक तहाई भी नहीं हो। गलती ना करूं तो कहीं देखा है मैंने।
हाँ। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती इन किस्से कहानियों से लोगों को वहशत में डालते हो? अपने शहर दियार के लोगों की बेघरी को कितने सिक्कों में बेचा है तुमने खयानतकार?
नमक हराम के हाथ कट जाए, उससे सही तरह पेश आओ।
तुम्हारे हाथ नमक हराम नहीं है, खयानतकार है। मैं इन्हें काट दूंगा।
इन झूठों के फरेब
इसके हाथ पांव बांध दो।
आप लोगों को मारना चाहते हैं, ये लोग आप सबको अपने ऊपर आने वाली बला के सामने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं लोगों का सौदा कर रहा हूँ या तुम लोग जो एक भी सीधी आंख तुम्हारे पेट पे नहीं है, जंग की खबर को क्यों छुपा रहे हो? इराक के लश्कर का हार मानना झूठ है या हसन इब्ने अली का जख्मी होना?
जब इन्हीं बिच्छुओं में से एक तुम पर छोड़ूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी। ले जाओ इसे।
ऐ लोगों, इराक के लश्कर बेशरफ चंद बेजान अंधे बहरे और बूढ़े बचे हैं जो साबात में मलकुल मौत का इंतजार कर रहे हैं।
ऐ लोगों, शामियों की नई चाल को उनके चेले की जबान से सुन लिया आप लोगों ने, अब कुछ जुमले अमीर मुख्तार सकफी से सुन लीजिए जो आज से मदाइन के मामलात और उमूर के जिम्मेदार हैं।
मैं गुमान कर रहा था कि मुआविया इराक के जंगजुओं के दिल और ईमान को खरीदने के लिए ऊंटों पर सोने के कूजे भरेगा, मगर ये लड़ाकू बिच्छू नहीं मजह का खैर चालों में से हैं जो सिफ़ैन में कुरान की सूरत में नेज़ों पर बुलंद किए गए हैं। सच तो ये है कि इराक अरब हमेशा से शामियों का बहुत ताकतवर हरीफ और मध्य मुकाबल रहा है और है। शाम के बहादुर अगर जंग लड़ने वाले मर्द होते तो इन बिच्छुओं का सहारा न लेते। इन लोगों की तमाम तर उम्मीदें आप लोगों की जहालत पे टिकी हुई हैं। लश्कर इराक के सोना पसंद लोग मैदान जंग में दाखिल होने से पहले ही मुआविया के सोने पर बिक चुके हैं। ऐ लोगों, मुश्तबा जख्मी हो गए हैं। मैदान जंग में नहीं और न ही शाम की फौजों के हाथ से, मौला रात की तारीकी में खवारिज की तैगे जफा से मजरूह हुए हैं। आज आपका शहर शहर मदाइन रसूल अल्लाह के बेटे का मेजबान है और शुक्र खुदा कि उनका जख्म ठीक हो रहा है और बहुत जल्द बिस्तर से उठकर मुआविया के इन हीलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं मुख्तार सकफी आज से ये कसम खा चुका हूं कि आज से हर खाइन और मशकों का वास को नुत्फे में ही मार डालूंगा। और ये शहर शहर मदाइन आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा।
किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं? आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहे जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुर्मती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके को जला दे। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाब है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है? मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूं जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अजादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नियत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। ला हुक्म इल्लल्लाह। भाइयों, शरीयत मुहम्मदी में कहां ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहे? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं।
वो बोलना आ गया है तुम्हें आर्दा? खाली मैदान में निजस पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस दंगवार हो। तुम लोग जो आज मुआविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली?
सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए जबकि शरीयत मुहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया न अली और ना उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। ला हुक्म इल्लल्लाह।
ابو احسان
کیا ہوا مختار نے کھیتی باڑی چھوڑ دی
اگر ضرورت ہے تو مختار کی موجودگی میں رجس خانی کرو
یہ تنازع اب دیکھنے والا ہے
اب آیا مد مقابل
میں نے سنا ہے کہ وہ سپہ سالار بن گیا ہے
ڈنڈورا پیٹنے والے تو اس کے امیر مدائن ہونے کا اعلان کر رہے
امیر مدائن تو تھا
مختار امیر مدائن کہاں سے ہو گیا مدائن کا امیر مختار کا چچا ہے
عجیب بات ہے کہ چمگادڑ دن کے اجالے میں میدان میں نکل آئے جہاں تک میں جانتا ہوں چمگادڑ روشنی سے ڈرتا ہے اور رات کی تاریکی میں شکار کے پیچھے بھاگتا ہے
تم تو غیر جانبدار تھے اور اس بھائی بھائی کی جنگ کے خلاف تھے ابو اسحاق اس کا مطلب ہے تمہیں بھی فریفتہ کر لیا ہے ان لوگوں نے تم نے کس لالچ میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا مختار
بادشاہی عراق کے بدلے کیسے جانتے ہو کیوں میں بقول تمہارے اس بھائی بھائی کی جنگ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا تھا اس کی دلیل اس عدالت پر غصہ ہے جو تم جیسے حیوانوں کو بھونکنے اور پنجہ مارنے کا موقع دیتی ہے اور تم لوگ عوام کے درمیان اپنے جاہلانہ افکار کو چلا چلا کر پھیلاتے ہو خوارج میری نظر میں کافر ہر بھی ہیں جن کا خون بہانا حلال ہے چاہے وہ تلوار کھینچیں یا نہ کھینچیں فقط اس بار تم لوگوں کے خون سے گزر رہا ہوں حکم الکاظمین الغیظ و عافین عن الناس کی اطاعت کرتے ہو اب تم لوگ دفع ہو جاؤ اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ ایک اور بار تم لوگوں کو میں نے دیکھ لیا تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دوں گا جاؤ اور اس پیغام کو اپنے خبیث دوستوں تک پہنچا دو
کیا تمہاری تلوار بھی تمہاری زبان کی طرح رجس خانی کرتی ہے عراق کے مستقبل کے بادشاہ
شیطان کی فوج کو کوئی موقع مت دینا اس گروہ کی رہائی رعیت پر ایک جفا ہے ان سب کو محل کا قید خانے میں لے جاؤ
جی امیر
اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو آج کے بعد کوئی بھی تلوار یا لکڑی یا چھرا وغیرہ لے کر شہر میں شور و بلوا برپا کرے گا وہ میرا دشمن ہے مجرم ہے چاہے وہ عرب ہو یا ایرانی اموی ہو یا علوی آج کے بعد مدائن میں امن و امان کا ذمہ دار مختار ہے اور کوئی نہیں
چور چور چور
چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں میری جان ہوا کیا ہے
مختار میدان میں اتر آیا ہے تم نے نہیں سنا کیا
کیوں نہیں مدائن میں آگ لگ گئی اور مختار نے پانی کی طرح اس کو بجھا دیا کیا نقشہ کھینچا ہے اس نے کسی کو بھی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گھر میں روکنے میں ناکام ہو گئی نا
میں نہیں کر سکی حنانا وہ جال میں نہیں پھنسا اور تو اور ناریا کا عشق بھی اسے روک نہیں سکا اس نے اپنے کان ہر وسوسے کے لیے بند کر لیے ہیں
تم کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو اگر مختار میدان میں اتر آئے تو کیا اس نے عمر کے ہاتھ باندھ دیے ہیں جب عمر عراق کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو پھر تو اسے مختار کی رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی
کیا وہ ایسا کر سکتا ہے حنانا
اگر تم چاہو تو کر سکتا ہے
اب اس نے کون سا خواب دیکھا ہوا ہے
اچھا ہی دیکھا ہے بیٹا عمر اور مختار بچپن سے ہی دوست ہیں معاملے کو مل کر حل کر لیں گے ادھر آؤ اگر تم سنو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس نے تمہارے لیے کون سی چال سوچ رکھی ہے
इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो। चलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वजब कत्ल हो, तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है, हाँ माविया या अली?
हर जाए से नसर पर असर वो सिर्फ या दो जो माविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आए। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके
ये इंसान का सर है या गधे का सर?
ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर?
ए खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा।
बेशक तू गिरेगा।
ए खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा।
पिट पिट के मरेगा।
ए खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक भी पड़ेगा।
सहना तो पड़ेगा।
ए खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का।
शैतान का चेला।
क्या भैंस की बदबू ने तुम्हारे दिमाग को सड़ा दिया है? क्या तुम समझते हो कि अली के बेटे के बैतुल माल से कुछ भेड़ों का रेवड़ तुम्हें मिल जाएगा? मेरे खिलाफ भेड़िए जमा कर रहे हो सारे जहां में फिर के। हाँ आओ आगे बढ़ो ताकि तुम्हारे इस नामुकम्मल मगज को कुत्तों की खुराक बना दूं।
क्या तुम्हारा बवासीर दोबारा निकल आया है या कीड़ा काट काट कर तंग कर रहा है? अपनी किस बीमारी की तकलीफ पर उछल रहे हो मोटे सांड? तुम्हें इससे क्या क्या मैं भेड़िए जमा कर रहा हूँ? किस हक के बिना पर मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हो मनहूस? मारू क्या?
गधे के बच्चे, अकल के अंधे, शाम का लश्कर मदाइन के दरवाजे के बार खेमे लगा कर बैठा हुआ है। अगर माविया को मदाइन में अली के बेटे के हामियों का पता चल जाए वो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा।
टिंडा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब माविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं माविया तुम्हारी रोटी रिश्वत न बंद कर दे।
अहमद खंजे, माविया इतना सखी है कि अगर खदे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अजरकियां डाल लेता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा गधे कहीं के।
अली के बेटे की अदालत के लिए यही बात है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं।
खुदा यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों।
माफिया के गधे।
अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ ना करवा सको।
तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो,
हमारे कौम कबीले से तुम्हारा क्या वास्ता?
तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुढ़े कौड़े चाहिए तुम्हें। फितनागर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रिंग रहा है।
सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं।
तुम अजमों के किस शाखे से हो?
दीलम के अजमों में से हूँ।
हजरमी अरब और दीलमी अजम का तनाजा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहां पर क्यों? मदाइन में रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाजे का मतलब फितना अंगेजी यानी जंग, कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं। कियान।
जी अमीर।
इन सब के नामा आमाल का बगौर जायजा लो। जिसने भी कोई जर्ब लगाई है या खाई है वो मुजरिम है।
जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है?
ये सब काजी का काम है, ना कि अमीर का काम।
दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे।
अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि कर्ब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर ना हो। क्या तुम्हें ये तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने घूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी?
जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। और हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए।
मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीरास पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार, अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते?
जिंदान क्यों नहीं ले गए?
हमने चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें।
इससे क्या होगा?
इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद हैं।
लोगों की आबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो।
जी अमीर।
आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं भाइयों। शायद अपने भतीजे की मदद से आप लोगों की जरूरत को चंद दिनों के लिए हल कर सकूं। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं।
अस्सलाम वालेकुम ऐ मुख्तार।
वालेकुम अस्सलाम। बैठिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अबू उबैद के बेटे मुख्तार के बारे में बहुत कुछ सुना, मुझे फख्र है आपसे मुलाकात पर।
ममनून और मशकूर हूँ। बैठिए।
खुदा रहमत नाजिल करे गुज़िश्तगान पर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए हो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई अबू उबैद आया है। तुम्हें पता है इस लिबास में किस कदर उसकी शबाहत रखते हो। मरहबा मेरी जान, तुमने मेरी इज्जत बढ़ा दी। تمہاری خبریں ایک ایک باریکی کے ساتھ مجھے مل رہی تھیں۔ کیا ضرب کاری لگایا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مفسدوں نے اپنے ہاتھ ملنا شروع کر دیے ہیں۔
خدا کا شکر ہے کہ حالات پرامن ہو گئے ہیں، اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں۔
مرحبا میری جان، ہم ان واقعات سے پہلے جو بھی کچھ اپنے انبار حکومت میں رکھتے تھے وہ امام کے حکم پر بیچ دیا۔ اس وقت حکومت کے موجودہ انبار میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے جیسے ہیں، صاف اور پاک۔ بہرحال میں مدائن کے مالدار باشندوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوں، آپ لوگ ثابت چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے قافلے کے ساتھ کچھ ضروری اشیاء اور کھانا وغیرہ بھیجوا دوں۔
خدا آپ کی عزت و جاہ و مقام میں اضافہ فرمائے۔ اگر امام کے پاس آپ جیسے 10 افراد ہوتے تو آج وہ مصیبت میں نہ ہوتے۔
مگر مشیت الہی کا کیا ہوگا بھائی؟ شاید اس مصیبت میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہو جس سے ہم بے خبر رہیں۔ آج مثال امام مجتبیٰ رسول خدا کی کل کی حکایت کی جیسی ہے جو احد میں ہوئی۔ احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے۔
بالکل صحیح، چلنے کی اجازت دیں گے؟
خدا کی پناہ میں، محفوظ رہیے آپ سب۔
جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے۔ آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی۔ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کے ہمراہ تلوار چلائیں۔
جو خدا چاہے سردار، پناہ حق میں۔
خدا حافظ۔
خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے۔ سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو، دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ سابات کا ایک چکر لگا لو۔ لشکر عراق اپنی روح ہو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے۔
بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان، آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں۔ میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا۔
اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہتے؟
نہیں چاہتا نہیں، بلکہ نہیں کر سکتا۔
کیوں نہیں کر سکتے؟ تم فرما روائی اور معاملات کو سنبھالنے میں ایک بے مثال مہارت اور قدرت رکھتے ہو۔ تم نے ایک آدھے دن میں مدائن کو تسخیر کر لیا۔ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ عراق کی ایک نڈال فوج میں دوبارہ جان ڈال دو؟
میں نے مدائن کو آدھے دن میں فتح کر لیا کیونکہ میں ایک مکمل اختیار رکھتا تھا، کیونکہ میں نے سرکوبی کی سیاست سے کام لیا۔ امام اس طریقے سے متفق نہیں ہے۔
کیوں؟
کیونکہ اس طریقے میں ممکن ہے کہ بے گناہ لوگوں کی بھی قربانی ہو جائے۔ رنگنے والا بہرام اس کا ایک نمونہ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر اسے بند نہیں کرتا تو عرب اور عجم کا شور خاموش نہیں ہوتا۔
بہت خوب، یہ بھی ایک دلیل ہے۔
مجھے امید ہے کہ امام کا مدائن میں رکنا زیادہ طولانی نہ ہو۔
تمہیں کس بات کا غم ہے مختار؟
میری کھیتی باڑی، میری رعایا کے معاملات، روٹی کھانے والے لشکر کو چلانا چھوٹا مشغلہ نہیں۔
کیان، مختار کے ایک اہم مشغلوں میں سے ایک تم ہو۔ اس شیر بہادر کو عورت، زراعت اور روٹی پانی میں قید کیا ہوا ہے تم لوگوں نے۔
کیان، میرا اہم مشغلہ تم ہو؟
मैं आपका गुलाम हूं मुख्तार।
चुकंदर की तरह लाल क्यों हो गए?
मरहबा इस हया, तवाज़ो और गैरत पर।
इस किनाया से आपका मतलब क्या है?
कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है, मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है।
क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक?
हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था।
कुछ गलत तो नहीं सोचा ना?
हकीकत यह है क्या, मेरा रिहाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है ज्ञान, जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है, मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं।
अरब की अजम से कैसे रिश्तेदार?
शर्मिंदा हूं कियान, मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती पर शक नहीं करोगे।
तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो अबू इसहाक। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए एक ऐसा शहद है कि कोई भी तलखी और तेजी इसकी मिठास को जायल नहीं कर सकती। आपसे रिश्तेदारी मेरे लिए एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी।
इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने? मेरी हुरमत जहन्नुम में जाए, ये होती है मेहमान नवाजी।
तुम कूजे को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब कियान, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारिया को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ।
मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो, कोई बात नहीं।
बदतमीज गुस्ताख कहीं की
नहीं अबू इसहाक, नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम,
वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें।
तुम दखल मत दो कियान, उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है।
मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए।
जारिया मेरी बेटी की तरह है, मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिंस में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा, तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था, उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनामो निशान ईरानी ना होता।
अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की।
मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैदे सकफी की बेटी, जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम मगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तोहीन को मेरे हक में कभी कबूल ना करते। तुमने कैसे कबूल कर लिया कि एक बेनामो निशान ईरानी अरब की तमाम तर रस्मों को पामाल करके अपने हवस की नजर कर दे मुख्तार?
फजीलत किसी कौम नजाद और कबीले से नहीं है नाफहम लड़की, हम मुसलमान हैं। उस ईरानी के बारे में क्या जानती हो जो इसकीने और बुग्ज के साथ उस पर हमला कर रही हो? तुम एक ना से भी उसे जवाब दे सकती थी।
उसने मेरी तौहीन की और मैंने भी उसकी तौहीन का जवाब दे दिया।
मुझे यकीन आ गया कि जाहिल अरब का खून तुम्हारे रगों में जारी है। गौर से सुनो जारिया, अब तक मैं समझ रहा था कि हलाल लुक्मा तुम्हारी वैश्याना खुल को खूब को बदल सकता है। आज के बाद से तुमसे उन जाहिल अरबों की जबान में बात करूंगा, उन्हें तैग व तबर की जबान में, जिन पर इस कदर नाच रही हो। तुमने मेरे दस्तरखान पर कद निकाला है, बस तुम मेरी कनीज हो।
अब तक भी यही था, तुमने हमेशा से एक बुरी नजर से मुझे देखा है। तुम मेरे मालिक हो ना के भाई, चाहो तो जिस भी कीमत पर दिल चाहे अपने उस ईरानी दोस्त के हाथों बेच दो मुझे।
कियान को दुल्हन चाहिए, बिच्छू नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। इस कदर कुंवारी रहो, इस कदर कुंवारी रहो कि तुम्हारे सर के बाल तुम्हारे दांतों के रंग के हो जाएं। शाबाश, शाबाश है जो तुमने इसे तमीज सिखाई है।
मैंने उसका साथ नहीं दिया मुख्तार, जारिया एक तन्हा लड़की है। आज उन लड़कियों की खुशनसीबी के बारे में बात कर रही थी जो जिंदा दफना दी गई हैं। वो तमन्ना कर रही थी कि काश वो लड़का पैदा हुई होती। मुझे डर है कि वो पागल ना हो जाए।
एक वहमे इश्क की दीवानी हो गई है। अगर तुम्हारा दिल उसके लिए जलता तो तुम उसके लिए एक अच्छी माँ साबित होती।
तुम तो नाइंसाफ नहीं थे मुख्तार, उसे अपने शौहर के इंतखाब का हक दे दो।
इंतखाब करे मगर पिसारे सादिया भी वकास को नहीं। मेरे लिए ये नंगवार का बायस है कि मेरा बहनोई उम्र साद हो। नारिया, अगर मेरे गुरूर को जख्मी किया तो अपने इश्क का सर कलम कर दूंगा। देखा अरब का आजम से क्या रिश्ता है। अगर मेरी जबान से इनकार सुन लेते तो शायद हजारों ख्याल तुम्हारे जहन में आते। मैंने सोचा कि तुम ना का जवाब खुद उस सरफिरी और पागल लड़की के मुंह से सुनो। वो मुख्तार जो मैदान जंग में एक नारा लगाकर फौज को डरा देता है और उनके तन बदन में रोंगटे खड़े कर देता है, उसकी अपने घर की हुकूमत में एक चूहे जितनी अहमियत नहीं है। दर्दनाक बात तो यह है कि मुख्तार एक अली का शिया उस लड़की पर आशिक हो गया जिसके बाप को रसूल खुदा ने लानत की है। उस इश्क के रुसवाई मेरी सात पुश्तों के लिए काफी है। नहीं किया, तुम नहीं। तुम अली के मुखलिस शिया होते हुए ऐसा शरीक हयात चाहते हो जो मलामत की हकदार है। यह नंगवार काफी है کے عمر ساتھ ایک گندا اور مکار بھیڑیا جاریہ کے قریب بیٹھا ہے اور اپنے باپ کے نام و نمود کی بنا پر اسے فریفتا کر رکھا ہے۔ میرا ہاتھ اس دجال تک پہنچ جائے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔
مرحبا، احسانت۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے لیے فخر کا باعث ہے کہ مختار ابن ابو عبید ثقفی اس کا دشمن ہے۔ مختار بزرگ کو غصہ دلا کر بہت غرور کا احساس کر رہا ہوں۔
آج کی رات اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کس گھٹیا انسان کی چال ہے یہ؟ تم میری آبرو اور شرافت سے کھیلنے کے لیے آئے ہو حرام زادے؟
زیادہ مت چلاؤ مرد مومن، خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ یہ کوئی میدان جنگ نہیں جہاں تم تلوار کھینچ رہے ہو۔ غلاف میں رکھو اسے، میں مہمان بن کر آیا ہوں۔ اس مہمان پر تلوار کھینچنا جو نہتا ہو، یہ کوئی جوا مردی نہیں ہے۔
جس نجاست نے اس گھر کو ناپاک کیا ہے، صرف کون سے پاک ہو سکتی ہے؟ آج کی رات یہ گھر ہم دونوں میں سے ایک کا گھر ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل جائے کہ عمر سعد اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا اور مختار نے اس کی جان لے لی۔
میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ جو خنجر کمر پر باندھا ہوا ہے اس سے اپنا دفاع کرو۔
اس کا مطلب ہے میں نے تمہارے بارے میں جو فہم و فراست کا سنا تو وہ مبالغہ تھا۔
زربی، جاؤ مختار کے چچا کو خبر دو جلدی۔
جی بانو۔
میرا جرم معلوم کرنے کے بعد مجھے مارنا نہیں چاہو گے؟
تمہارے جرم کو تمہاری قبر پر لکھ دوں گا، اپنا دفاع کرو۔
میں جاریہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، جنگ کرنے نہیں۔
جاریہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔
میں تمہیں نہیں مالوں گا، کیونکہ میں جاریہ کے آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔
ناریہ، میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں، صرف تم مختار کو ٹھنڈا کر سکتی ہو۔
میں ڈر رہی ہوں جاریہ، وہ آج رات بہت زخم کھا چکا ہے۔
بے وقوف نہ بنو مختار، ہم اس موضوع کو مردانہ انداز میں حل کر سکتے ہیں۔
میں تو اپنے سامنے مرد نہیں دیکھ رہا، تم اگر مرد ہوتے تو آل امیہ کی درگاہ میں کسی کتے کی طرح نہ بھونکتے۔ معاویہ نے تمہارے باپ کو زہر سے مار دیا اور تم نے بجائے انتقام کے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ جو اپنے باپ کے خون پر تھوکے وہ اس حیوان کی طرح ہے جو اپنے ہی مردگان کا گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ خنجر نکالو، لاش کھانے والے نامرد، اپنا دفاع کرو۔
یاد رکھنا، تم نے خود کہا تھا میں آج رات خیر کے ارادے سے اس گھر میں آیا تھا۔ افسوس ہے کہ میرے حصے میں شر آیا۔ خوب ضرب لگاتے ہو مختار، مگر میں بھی جنگجو آدمی ہوں۔ آج کی رات یا تو عشق کے قلعے کے دیوانے اور سر پھرے داروغہ پر غلبہ حاصل کر لوں گا، یا پھر معشوق کے وصال کی راہ میں جان دے دوں گا۔
پہلے کہ وہ اپنے عشق کو مار دے، کچھ کرو۔ اس جنگ کا انجام سو کا لباس ہے جو ہم دونوں میں سے کوئی ایک پہنے گا۔
میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں جاریہ، اب تک مختار کو میں نے اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ تیرا پاؤں ٹوٹ جائے سبھی، کہاں چلے گئے؟ فقط سعید ہی اس جنگ کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔
ثابت کر دوں گا کہ فاتح ایران کا بیٹا ہوں۔
ایران کے فاتح سردار کے بیٹے، اگر ذرا برابر بھی کوئی عزت تیرے لیے بچی ہے تو وہ تیرے باپ کی طرف سے میراث ہے۔ باپ کی فتوحات پر ناز کرنا ہنر نہیں ہے۔
میں دیکھ رہا ہوں کس طرح تم مٹی میں لوٹ رہے ہو۔ بے ہنر مرد مقابل کو طلب کرنا اتنے شور میں
جاؤ چچا کی جان۔ تا
تم کہاں اور سفید محل کہاں اس پہ سر ساتھ؟
امر خیر کے لیے آیا تھا میں. آپ کے محل کے رسی توڑانے والے کتے نے مجھے پنجے دکھانا شروع کر دیے.
کون سا امر خیر نامرد؟
ہاتھ مانگنے آیا تھا میں جاریہ کا.
جو خود گدھا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح گدھا سمجھتا ہے. ہاتھ مانگے جانے کے بھی کچھ رسم مراسم ہوتے ہیں. تم گھر والوں کی اجازت کے بغیر, دخل باپ کے بغیر, اور وہ بھی اس رات میں جب سفید محل رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہے, اس حکومتی محل میں آئے ہو تاکہ لڑکی کا ہاتھ مانگو.
تو کہاں غلطی کی ہے میں نے؟ اجازت کے بغیر اس لیے آیا ہوں کیونکہ جانتا تھا کہ مجھے خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دروازہ مجھ پہ نہیں کھولا جائے گا. آج کی رات یہ محل رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہے, تو میں بھی تو رسول خدا کی سنت حسنہ پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں.
کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو عمر. ہم نے حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی بغیر اذن دخول داخل ہو جائے اس کا خون بہا دیا جائے. تم کیسے اس محل میں گھس آئے اور اب تک زندہ ہو؟
خوب, یہ تو میرا ایک بال بلند تھا کہ میں اب تک زندہ ہوں, اور یہ دیکھیے میرا خون بھی بہا ہے.
تمہارا ایک بال بلند نہیں تھا, احتمال اس بات کا ہے کہ ہمارے محل کی دیواریں مضبوط نہیں تھیں. شاید ہمارے دروازے کا محافظ کسی درہم و دینار کی تھیلی سے کمزور پڑ گیا ہو. جلد پتا چل جائے گا کہ رشتہ مانگنے کے بہانے کے پیچھے کون سی غلط نیت چھپی ہوئی تھی. ڈال دو اسے قید خانے میں.
تم تو ایک عقل مند اور باتقوا مرد ہو حضرت والی, کس عدالت پسند دلیل کے تحت مجھے قید کر رہے ہو؟
ابھی کوئی حکم صادر نہیں ہوا ہے, تم چند دنوں کے لیے محل کے مہمان ہو.
جناب والا, علی کے بیٹے کے لیے کوئی در و دیوار بچے ہی نہیں ہیں جنہیں مجھے فتح کرنا پڑے. آپ خواہ مخواہ شک کر رہے ہیں.
یہی تو تم غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو. میں جب تک رسول خدا کے بیٹے کا میزبان ہوں یہ تہیا کر چکا ہوں کہ شامی شیطانوں کے طریقے پر حکومت کروں. اگر کوئی دلیل ہوئی تمہارے پاس تو میں محاکمے میں سنوں گا.
اس بچھو کو میرے حوالے کر دیں چاچا جان, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی زبان کھلوا دوں گا.
ایک شرط پر مختار, وعدہ کرو کہ اسے مارو گے نہیں.